komşum.
Komşum.
Yatma cebine. Dur.
Dur. Dur. Dur.
बहुत सत्य है तो उसका सुनाई हुआ ज्ञान भी सत्य ही होगा था उसके बोले हुए महावाक्य भी सत्य ही होगा संसार की महान आत्माएं चमत्कार दिखाने वाले बाप से वंचित करने वाले दूर ले जाने वाले उसके वाक्य को भी संसार के लोग बच्चन महाराज के और यहाँ पर संशय उठाना संकल्प करना प्रश्न उठाना ये भी क्या है अपमान अनादर अनादर डिसरिगार्ड दो रीति से प्रश्न पूछे जाते हैं एक है स्पष्ट करने के रूप से और दूसरा है दूसरा है संशय से प्रश्न करना और तीसरा है
तर्क
कुतर्क और चौथा है अपना अभिमान दिखाने के लिए प्रश्न करना और पांचवा है
मेरा प्रश्न
मेरा प्रश्न प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है मैंने जो पूछा है वो महत्वपूर्ण है उसका उत्तर मिले ना मिले मतलब उत्तर किस रीति से दे रहे वो महत्वपूर्ण छठवा है प्रश्न पूछने की क्या चीज और किस रीति से एक है सताने के लिए सताने के लिए तंग करने के लिए प्रश्न पूछे जाते पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं अंदर वो अलग वो बोल दिए वो स्पष्टीकरण में आएगा वो तो यथार्थ है वो तो होना ही चाहिए पर हम दूसरे प्रकार के प्रश्न और एक प्रश्न है जिस तरीके से पूछा जाए वो कौन सी जिसमें अहंकार तो बोला है पर उसमें और एक चीज हो सकती है कि चेक करने के लिए जांच इसको आता है कि नहीं हमको तो पता है पर पूछते
कई बार बोल भी देते हैं ना इसलिए पूछ रहा हूँ आपको पता है या नहीं
तो एक है संशय से प्रश्न पूछना एक है स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना एक है अहंकार से प्रश्न पूछना एक है मेरा प्रश्न एक है चेक करने के लिए पूछना एक है सताने के लिए पूछना साई बाबा के जीवन में दिखाते हैं कि साई बाबा लेटे हुए हैं और उनका एक भक्त था जो कि जज थे मजिस्ट्रेट वकील कोर्ट बड़े जज वो भले भक्त थे उनको मानते तो थे चमत्कारों की वजह से परंतु अंदर में अपना हम अभिमान तो होता ही है तो दिखाया है कि वो उसके एक बार पैर दबा रहे हैं और थोड़ा संस्कृत के श्लोक बोल रहे गीता के तो साई बाबा ने कहा क्या बोल रहे हो तो बोलता ये संस्कृत में आपको नहीं समझ में आएगा बोलते फिर भी बता तो बोलते ये तो अनपढ़ है फकीर है धार्मिक उसको कहा इसमें शास्त्र पढ़े ना तो इसको लिखना आता है ना पढ़ना आता है बोलते फिर भी बताओ तो क्या है तो उसमें वो जो श्लोक था वो गीता का ही श्लोक था तदविद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानिना ज्ञानिनाम तत्वदर्शना तो बोलते इसका अर्थ बताओ मुझे बोलते इसका अर्थ तो ये है कि जो आप गुरु के पास जाते हो तो प्रश्न पूछना चाहिए ताकि वो उत्तर दे तो बोलते ये परी शब्द का अर्थ क्या है वो बताओ बोलते परी वो तो मुझे भी नहीं पता फिर वो दिखाता है कि वो उसका पूरा स्पष्टीकरण करता है श्लोक का साई बाबा साई बाबा वो तो
वो कह रहा है कि ये क्या जाना
हाँ ये अंदर ही सोच रहा है ना सोचेगा ना ये तो फकीर है अनपढ़ है भिखारी टाइप भले अवतारी है पर इसको ये गीता का ये श्लोक वगैरह कहाँ से संस्कृत तो ऊंची भाषा है वो थोड़ी समझ में आएगी तो उसको समझाता है फिर श्लोक का अर्थ उसमें ऐसा अर्थ है उसका कि जब तुम अपने गुरु के पास जाते हो तो मन में संशय लेकर नहीं जाओ मन में समर्पण भाव परिप्रश्न न सेवया इस भाव से जाओगे अगर इस भाव से जाओगे कि इसको पता है कि नहीं पता चेक करने के भाव से इस रीति से प्रश्न नहीं पूछना समर्पण भाव सेवा के भाव से जाओ, ऐसा अगर जाओगे तो उपदेश अंति ज्ञानी, फिर वो गुरु उपदेश करेगा ज्ञान से, ज्ञानी नाम तत्व दर्शन उस तत्व के बारे में जो कि सर्वोपरि है और तुम ज्ञानी कहलाओगे। तो ये भी एक प्रश्न है, मतलब प्रश्न पूछना जरूरी है बहुत, पर ये बाबा ने कहा इस रीति से उस किस भाव से प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें अहंकार तो नहीं। और बाबा जो भी सुनाते उसको अंधश्रद्धा के रूप से भी स्वीकार नहीं करना, ये भी बाबा ने कहा। निश्चय की बात नहीं चल रही है, निश्चय हो चुका है पर अभी ज्ञान के समझ, ज्ञान को समझना है, उसके लिए तो ढेरों प्रश्न निकलेंगे और वो जरूरी भी है, उसके लिए विचार सागर मंथन भी जरूरी है। हाँ, नहीं तो वो उतरेगा नहीं अंदर। क्या बाबा कह रहा है, बाबा ने कहा ना जज करो, मैं कहता हूँ वो राइट है कि शास्त्र जो कहते हैं वो राइट है, मैं कहता हूँ वो राइट है कि साधु संत जो कहते हैं वो राइट है, मैं कहता हूँ वो राइट है कि महापुरुष जो कहते हैं वो राइट है। तो ये सम्मान किसका है, पढ़ाई का सम्मान किसको देना है, पढ़ाई, उसका अर्थ पढ़ाई के लिए रिस्पेक्ट, अर्थात क्या कहा बाबा ने,
ज्ञान के
वो टीचर के लिए रिगार्ड है, टीचर के लिए रिगार्ड नहीं कह रहा हूँ मैं, पढ़ाई के लिए रिगार्ड। सेकंड पॉइंट चालू है ना, हाँ क्या एक एक वहाँ होती में क्या आज तो मुरली को बताओ। हाँ निश्चय, बाबा ने कौन सा शब्द बोला है, आदि से अब तक बाप के उच्चारे हुए एक एक महावाक्य में अटल निश्चय, अटल निश्चय एक एक महावाक्य में, कोई संशय नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई प्रश्न नहीं। तुम जैसे वहां पर सत्वचन महाराज कहते हैं लोग, तो ये तो कौन है, ये सदगुरु सभी का रचयिता परमात्मा है, तो वो जो कहता है उसमें प्रश्न उठाना, सूक्ष्म संकल्प सूक्ष्म संशय भी डिसरिगार्ड है पढ़ाई का। वो स्वप्न मात्र या नहीं, वो मन्मत परमा, ये हमारा सेकंड पॉइंट चालू है, सेकंड रिगार्ड नॉलेज का रिगार्ड, ज्ञान का रिगार्ड, ज्ञान में निश्चय, बाप में निश्चय, ढाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय है, सब में निश्चय, पर एक ये सेपरेट टॉपिक है, कौन सा, ज्ञान में निश्चय। बाबा ने कहा है पर मुझे नहीं लगता ये होगा, मुश्किल है, असंभव है, ये भी क्या कहा बाबा ने, ये भी डिसरिगार्ड। बाबा ने ऐसे बहुत सारी बातें कही है कि जो कि साइंस के विरोध में भी है कुछ कुछ बात, माता है और भोले भाले लोग तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, पर जो शिक्षित है तब मनस्वी जिसको कहते हैं एजुकेटेड, वो मनीषी, वो उसको उतना मन में संशय रहता है कि पता नहीं ये बाबा क्या कह रहे। चलो विश्वास तो है, निश्चय है।
एक टीचर आए तो रामनाथ भाई को पूछा, बिना मिनट का तो 7-10 साल आयु बताते हैं,
अभी कल परसों भी मुरली में था ना हड्डिया, लाखों वर्ष कहते हैं, लाखों वर्ष तो हो ना सके, अभी इसमें प्रश्न उठता है, फिर वो कार्बन डेटिंग जिससे उसकी आयु निकाली गई, फिर वो डायनासोर उसका क्या, फिर जो वो मिल रहे हैं जमीन में हड्डियां मिल रही है उसकी आयु निकाल रही है इतने करोड़ वर्ष, इतने लाख वर्ष, और बाबा ने तो सारा चक्र ही 5000 में समेट लिया, फिर कैसे, तो घूम गया तो वो अभी तक है हड्डी। पूरा सृष्टि परिवर्तन हो रही है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आ रहा है, तत्व हिल रहे हैं पूरे, तो वो पुराने तत्व तमोप्रधान अभी तक रहेंगे। वो कार्बन डेटिंग राइट है या रॉन्ग है, प्रश्न यहाँ तक यहाँ उठता है। फिर क्या साइंस संपूर्ण है, विज्ञान संपूर्ण है, अनुमान है, अजम्पशन है,
लगभग बोलते हैं
लगभग, पर बाबा जो कह रहा है वो अल्टीमेट है। और ये निश्चय तब, कब, 60s में, इनके लिए उन आत्माओं ने तब, जिनको जिन्होंने तब निश्चय कर लिया उनको बाबा अब तक भी उनकी संभाल करते हैं, क्योंकि किस समय निश्चय किया, उस समय 20 साल पहले साइंस कितनी तरक्की नहीं थी, 25 30 40 साल पहले साइंस इतना विकसित नहीं था जितना आप है, तब बाबा ने वो सब कहा था और उसको तभी स्वीकार कर लिया कि यही सत्य है, यह निश्चय। तो बाबा ने जो जो महावाक्य के उच्चारण किए उसमें अटल निश्चय आदि से भले उसमें बहुत सारे विरोधाभास थे, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, ये मुरली में ऐसा है वो मुरली में वैसा है, मुरली मुरलियों में अंतर है, परंतु मुरली जो चल रही है वो देश काल परिस्थिति अनुसार चल रही है, सामने कौन बैठे उस अनुसार चल रही है, किसी में कुछ किसी में कुछ, कभी ज्ञान श्रेष्ठ बता रहे कभी योग श्रेष्ठ बता रहे कभी कर्म को ही श्रेष्ठ बता रहे, कभी ये सब नहीं धारणाएं श्रेष्ठ, अलग अलग रीति से मुरली है, इतनी इतना उसमें विरोधाभास है, इसको कुल नहीं कहा जा सकता, ये है ब्राह्मण कुल, इसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, ये है ब्राह्मण डायनेस्टी, दूसरे मुरली में ऐसा क्या क्या
जो म्यूजियम प्रदर्शनी,
मतलब वही बाबा ने तो अलग अलग रीति से हर एक मुरली अपने अपने रीति से, एक उसमें एक लहर है उस लहर से वो चला रहा है, जैसे सामने बैठे इस ब्रह्मा को याद करोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ब्रह्मा के सिवा तो तुम उसको याद करने से फायदा नहीं होता, उसको याद किए से उस तक याद पहुंचेगी नहीं, हाँ तो ये दोनों चीजें सामना सामने कौन बैठा है, सामने कोई बैठा है जो 10 घंटे सोता है तो बाबा कहते हैं संसार के लोग 8 घंटे सोते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, एक मुरली में ऐसा भी बोला है बाबा ने, साकार महाभारत की सामने कौन बैठा था उसको देखकर चल रही है ना, उसको थोड़ा जगाना भी तो है,
प्रदर्शनी वालों के लिए बोला, अभी वो गुड मॉर्निंग भी बोला, गुड मॉर्निंग नहीं करोगे तो बेकार
मतलब इस तरह से बात है, तो वो मुरली जो है उसमें हमारा निश्चय हिलने की, उसमें किस रीति से चल रही है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसको समझना पड़ेगा, उस परिस्थिति को समझना पड़ेगा, महीन बुद्धि चाहिए बहुत सूक्ष्म, जैसे दादी जानकी के क्लासेस को अगर समझना है तो दादी के आसपास 2-3 दिन में क्या हो रहा है वो थोड़ा ज्ञान चाहिए नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता है, उसमें आसपास क्या चालू था 1-2 दिन में या आज या सुबह वो होगा पता तो थोड़ा समझ में आता है, नहीं तो वो मुरली भी दादी का क्लास होता है साकार मुरली है, उसमें असंख्य पॉइंट है, अनगिनत रत्न है, कोई इधर कोई उधर कोई उधर कोई इधर बिखरे हुए है, वो किसी ने पूछा क्या सुना क्लास में तो पता नहीं, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत तुमने मिस कर दिया, आना चाहिए था, अच्छा क्या था वो तो बताओ, वो नहीं पता,
प्रश्न मिले दादी से तो दादी से पूछा कि दादी कारण कुछ नहीं है, कोई ऐसी कोई गलती नहीं की, कुछ नहीं की, लेकिन खुशी नहीं रहती, वो ज्ञान सरोवर में यहाँ जहाँ भी क्लास हुई एक भाई था उसमें ये कोई माना उसकी उधेड़ते रहे वो अच्छी तरह
वही कह रहा हूँ ना, तो उसी तरह ये तो परमात्मा वाक्य है, इनको समझने के लिए कोई इतने साधारण नहीं हो सकते जितना हमने उसको साधारण समझ रखा है, सारे शास्त्र एक तरफ है, सारे उपनिषद एक तरफ है, स्मृति और श्रुति एक तरफ है, और बाबा के महावाक्य एक तरफ, जितने महात्माएं आए वो सब एक तरफ है, जितने दार्शनिक आए, जितने दर्शन है भारत में, जितने धर्म है और धर्म के सिद्धांत है वो सब एक तरफ, और बाबा जो सुना रहे हैं वो एक तरफ, वो इतने साधा है, वो इतने साधे है इसके लिए हम उसको हमको उसमें इतना ये नहीं लग रहा है, वो जरा क्लिष्ट होते ना, जैसे शास्त्र में कोई श्लोक होते हैं ना उसका कैसे बड़े बड़े और उसमें बड़ा बड़ा टिप्पणियां होती है, भगवत गीता को ही ले लो कितनी सारी टिप्पणियां हैं, एक ही भगवत गीता पर उसकी कितने लोगों ने उस पर टीका की और हर एक ने अपने अपने रीति से लिया है, जिसको जो अच्छा लगा वो उसने उसने वहां से लिया, किसी ने भक्ति की रीति से टीका टिप्पणी की होती है, किसी ने ज्ञान की रीति से, किसी ने वैराग्य, किसी ने अद्वैत वेदांत के रूप से, अलग अलग लोगों ने अलग अलग किया उसके ऊपर, पर ये उसके कंपैरिजन में ये सर्वोपरि है, यह निश्चय कि जो उसने कहा ना बस वही राइट
फाइनल
वो गीत है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहोगे कहेंगे, गीत है ऐसा संसार में कोई गायक होगा, यहाँ पे जो है ना यहाँ निश्चय का प्रश्न है कि उसने जो कहा बस वही सत्य है, चाहे उसका फिर विज्ञान उसको सपोर्ट करे या ना करे, वो अगर सत्य है तो उसका कहा हुआ सब कुछ सत्य है, हाँ। इन्होंने कुछ ज्यादा कुछ किसी ने कोई शास्त्र और ये सब पढ़े क्या दादी, किसी ने नहीं पढ़े, उनका सबसे मेन तो निश्चय और उस समय निश्चय, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो दूसरा रिगार्ड है पढ़ाई के लिए, चलो अभी मुरली में क्या बोला आज कहाँ से शुरुआत है, कौन देख रहा है किसको, भाग्य विधाता देख रहा है किसको, भाग्यशाली बच्चों को, श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को, क्या देख रहा है उनका रिगार्ड का रिकॉर्ड, रिगार्ड अर्थात सम्मान, आदर करना, सत्कार करना, किसी को मान देना, रिगार्ड करना। एक दूसरा भी शब्द है सम्मान, एक है सम्मान, सम्मान समारोह होता है, सम्मान समारोह भी होता है, एक ही जैसे शब्द है, ज्यादा अंतर नहीं। सम्मान सम्मान
सम्मान
सम्मान
होता है
नहीं, शब्दों का भी डिफरेंस, एक है सम्मान एक है सम्मान। सम्मान शब्द ज्यादा प्रयोग में आता है, सम्मान शब्द अपने आप में विशेषण है, एडजेक्टिव, सम्मान समारोह अपने आप में, या सम्माननीय व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति, पर ये जो है ये है रिगार्ड। नहीं, एक ही अर्थ है दोनों का, पर ज्यादा जो प्रयोग हुआ था वो है सम्मान, सम्मान देना। तो बाबा ने कहा तुमको सम्मान देना है, किस किस को सम्मान देना है, बाप को, पढ़ाई को, स्वयं को, और ब्राह्मण और संसार की सर्व आत्माओं को। और बाप ने भी हमें सम्मान दिया है, कैसे और कहाँ और कब, सब सम्मान दिया आदिकाल से, बाबा ने कहा ना कौन कौन से सम्मान दिए, सतयुग त्रेता में सम्मान दिया, द्वापर कलयुग में सम्मान दिया, और संगम पर सम्मान दिया, क्या क्या कहा उसने, बहुत सारे महावत के बच्चे मेरे से आगे हो गए, संगम युग का सम्मान दिया, डबल पूज्य, सिर के ताज, ये सारे सम्मान ही दिए ना उसने, अपने से आगे रखना। बाबा ने अपने आप को क्या किया, समर्पण किया बच्चों के आगे, ये भी सम्मान है ना, तो उसने हमको सम्मान दिया, डबल पूज्य बनाया, खुद डबल पूज्य नहीं बना, हम डबल पूज्य बने। हमारी मूर्तियों को बनाने के लिए कलाकारों की आवश्यकता थी, उसका वो पहाड़ी से बहकर आ जाता था गिरते हुए, उसमें आभूषण नहीं है उसके मंदिरों में, हमारे मंदिरों में मूर्तियों में आभूषण है, मूर्तियां हमारी बनी है, मंदिर हमारे श्रेष्ठ बने हैं,
क्योंकि हमने ज्यादा साइन किया उदाहरण
निरंकारी
निरंकारी गाली दिया लेकिन गिला नहीं किया, लेकिन लक्ष्मी नारायण की नहीं।
हाँ, तो वो उसने अपने लिए कहा कि वो निरंकारी करके उसकी भी महिमा हो ना, सोमनाथ का मंदिर के बारे में कहा। तो बाबा ने भी हमको सम्मान दिया, तो बाबा सम्मान का रिकॉर्ड देख रहे, क्या क्या देखा रिकॉर्ड में, बहुत सारी चीजें देखी, रिकॉर्ड कैसा है, मार्क्स कितने हैं इस रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड कैसा है, खंडित है या अखंड है, रिकॉर्ड कैसा है, इसकी जो लकीर है वो सीधी है या टेढ़ी बाकी है, ये अटल है कि माया परिस्थिति इसको हलचल में लाती है, ये दोनों ये सारी देखा, रिकॉर्ड देखा सारा। सबसे पहला सम्मान कौन सा, बाप का सम्मान, उसमें क्या क्या, संबंधों की मर्यादाओं को निभाना यथार्थ रीति से, या जैसे है वैसे स्वरूप से, वैसे यथार्थ परिचय से, जैसा है वैसे यथार्थ स्वरूप से और यथार्थ परिचय से सर्व संबंधों को निभाना, सर्व संबंधों के मर्यादाओं को निभाना। सबसे पहला संबंध कौन सा, बाप का, बाप के संबंध में फॉलो, कदम कदम पर चलना, मनमत परमत संकल्प में स्वप्न मात्र भी नहीं, जैसे मनमत परमत क्या है वो पता ही नहीं, अविद्या हो उसकी। तो सबसे पहला बाप फॉलो फादर, दूसरा शिक्षक, शिक्षक चरित्र से क्या, पढ़ाई में नियमित और समय पाबंद, समय निष्ठ,
बिना नागमना
कोई रेगुलर पढ़ाई, रेगुलर पढ़नी है, नियमित पढ़नी है, पाबंद से, समय पाबंद, समय निष्ठ, पंक्चुअल, ये भी एक धारणा। तो ये पढ़ाई में, और एक चीज है पढ़ाई में, चारों सब्जेक्ट में फुल अटेंशन,
धारणा की कमेटी है,
धारणा की कमेटी, अपने धारणा का आयोग, कमेटी, समिति बनाओ। ऐसा नहीं, बाबा ने आगे कहा ना थर्ड पार्टी से कि क्या कहा उसने, सेवा के प्लान से पहले अपना प्लान बनाओ, ये तो सेवा में विघ्न आते, उसमें अटेंशन की कमी है, बैलेंस स्व सेवा और विश्व सेवा, सर्विस का बैलेंस नहीं है इसकी वजह से, इसके लिए पहले अपने प्लान बनाओ, अपनी धारणा की कमेटी बनाओ। तो दूसरा तीसरा संबंध है कौन सा, शिक्षक, और उसके बाद फिर सद्गुरु। सद्गुरु के लिए क्या, उसकी जो आज्ञा है, आज्ञा बाबा ने कहा देह सहित देह के संबंधों को भूल देही स्वरूप में स्थित होना, या फिर निराकारी स्थिति में स्थित होना, एवर और घर जाने के लिए वापस जाने के लिए एवर रेडी, सदा तैयार। मौत मुंह खोल कर खड़ा हुआ है, अभी दो तीन दिन पहले मुर्गी में था, कल ही खड़ा था, मुंह खोल कर मौत खड़ा हुआ है, कभी भी आ सकता है, कभी भी दरवाजा ठक ठक आएगा, चलो तो छूट नहीं पाएंगे फिर, चाहे कुछ भी करो नहीं छूट पा सकते, तुम छूट नहीं सकते मौत से, चाहे कितना भी कोई चतुर हो चालाक हो नहीं छूट सकता, ऊपर हो नीचे हो आसमान में पाताल में
प्लेन में
हो किधर भी हो, वो कहानी है ना एक मूर्तिकार की, एक मूर्तिकार है वो इतना कुशल है मूर्ति बनाने में कि उसके जैसी मूर्ति निष्णात है, उसकी जैसी मूर्तियां कोई नहीं बना सकता, वो जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है उसकी कला ऐसी होती है कि सब उसको देखकर जैसे उसकी मूर्तियों में जान है, ऐसी उसकी मूर्तियां होती है, और पर जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है उसको अभी चिंता होने लगती है कि मेरी तो मृत्यु आएगी, अभी कैसे बचूं इस मृत्यु से, यमदूत तो आएंगे, यमदूत लेने आएंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, तो एक तरकीब रचता है, वो क्या करता है अपने जैसे ही 10 मूर्तियां बना देता है और उसमें भी खैर स्वयं खड़ा हो जाता है 11, तो यमदूत जब आएंगे तो मूंज जाएंगे कि इनमें से किसको लेके जाए वैसे वो तरकीब करता है और खड़ा हो जाता है, और फिर यमदूत आते हैं, यमदूत देखते हैं, यमदूत भी हैरान आश्चर्य है कौन है इसमें से, वो मूर्तिकार कैसे इसको पहचाने, सब एक जैसे, अभी अगर गलत मूर्ति को लेके गए और यार तोड़ दिया तो मूर्ति का अपमान हो जाएगा, इतनी बड़ी ये तो बहुत बड़ा कलाकार है, इसकी कला का अपमान हम नहीं कर सकते, नहीं वापस नहीं गए वो भी चतुर सुजाने, उसमें से एक यमदूत कई होते ना, यमदूत ग्रुप होता है, छह लोग आते हैं यूजुअली, अगर उनसे नहीं होता है तो फिर अपने बॉस को बुलाते हैं, जैसे वो सत्यवान की केस में सावित्री सत्यवान पहले कूद गए, फिर उसने वो नहीं माने तो वो आया डायरेक्ट, कभी कभी बॉस डायरेक्ट भी आते वीआईपी केसेस में फिर वो एक युक्ति रचता है, वो मूर्ति वो कहता है, एक यमदूत कहता है ये मूर्तियां तो बहुत सुंदर है पर इस मूर्तिकार में एक त्रुटि रह गई है, मूर्ति में एक जबरदस्त कमी है, वो बोलता है कमी एकदम उसको अहंकार जागृत होता है ना, कौन सी कमी, मेरी मूर्ति में कमी नहीं हो सकती, तो बोलता बस यही कमी रहेगी अहंकार बेजान मूर्तियां बोलती नहीं है, चलो अभी साथ में मृत्यु किसी को मृत्यु को नहीं रोक सकते, चाहे कुछ भी युक्ति करो जो करना है करो,
मृत्यु भी है हम बन
गया वो वहां पर भी शांत रहना होता है कि हमने कुछ हमारा जो फील्ड है अगर उसमें कोई कुछ कहे ना तो अहंकार जागृत होता है, बाकी इसमें कोई कहे तुम्हारा योग ठीक नहीं है, ठीक है नहीं है, पर तुम जो काम कर रहे हो उसमें अगर कोई कुछ कहे तो फिर चोट लगती है अंदर हाँ उसमें चोट लगती है, तुम ये तुम्हारा ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं है, ठीक है तुम्हारी धारणाएं का मैं ठीक है इसमें, पर सेवाओं के फील्ड में और जो हमारी स्पेशलिटी है उसमें ही आकर हमारे डिपार्टमेंट में आकर अभी अभी आया हुआ और हमको सिखा रहा है, तब अहंकार को चोट होती है तो जागृत होता है अहंकार फिर, तो एवर रेडी कहा बाबा ने, सदगुरु की आज्ञा वापस जाना इसके लिए एवर रेडी, ये था सदगुरु के प्रति सम्मान। उसके बाद साजन के प्रति सम्मान, क्या हर संकल्प हर सेकेंड एक आशुक की लगन, आशिक की आशुक की लगन, और क्या तुम्हें से खाऊं बैठूं वफादार, वफादारी को निभाना, एक के प्रति समर्पण भाव, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। ये बहुत ऊंची अवस्था है, कोई ना हो उसके अतिरिक्त, कोई अच्छा ना हो संसार, चाहे कितना भी कोई आकर्षण करने वाला हो। तो बुद्ध के जीवन में दिखाते हैं ना, बुद्ध छोड़ के, गौतम जब था वो सिद्धार्थ, वो छोड़ के चला रथ में, उसका जो सारथी है चन्ना, वो उसको अंतिम चेतावनी देता है कि एक बार फिर सोच लो, देखो पीछे मुड़कर तो देखो क्या है, तुम्हारी सुंदर पत्नी, तुम्हारा सुंदर बेटा, वो राजप्रसाद, ये शानो शौकत, ये ऐशो आराम, तुम क्या करने जा रहे हो। तो बुद्ध क्या कहता है, मैं केवल एक ही चीज देख रहा हूँ, बस आग की लपटे और कुछ नहीं, बस आग ही आग दिख रही है मुझे, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, सब जलता हुआ दिख रहा है, सब कुछ नाश होता हुआ दिख रहा है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। हाँ, वो तो पहले पांच वो सब हो गया, ये लास्ट वो सब हो गया, वो चारों देख लिया, उसके बाद जब निकला और अभी बस उसके सारथी को बस बोला कि अब तुम वापस जाओ, वहां पर जब उतरा रथ से दोनों, उसने कहा अब तुम निकल जाओ, मैं अकेला, अभी आगे की यात्रा मेरी अपनी है। तो संसार की कोई भी आकर्षण आकर्षित ना कर, चाहे चाहे कुछ भी हो, अगर करता है तो उसके ऊपर सोचना है, उसको दबाना नहीं है उस आकर्षण को, वो क्यों आकर्षित करता है उसके ऊपर सोच विचार करता है। उसको जो हमारी कमी है, बाबा ने होमवर्क भी तो वही दिया ना, एक कमी को हटाओ और एक विशेषता धारण करो, रात में सोचो सुबह अमृत वेला दोहराओ। जैसे क्रोध, क्रोध है, हम क्या कहते हैं, क्रोध कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी आता नहीं, वो हमेशा ही है वहां पर, वो खाली प्रकट कभी कभी हो रहा है। तो ये सबसे पहले सर्वांगीण स्वीकृति कि हम में ये सब कुछ है। हम क्या कहते हैं, काम विकार तो हमारे में है नहीं, ऐसा नहीं कहा जाए, काम है, वो तो कोई ट्रिगर उसको मिल गया तो वो प्रकट हो रहा है वहां पर। तो ये स्वीकृति कि ये विकार है और उसको देखना, आमने सामने देखना, हम ये सबसे कम काम करते हैं, उसको देख नहीं पाते अपनी कमजोरी को, उसको रूबरू होना, उससे आमने सामने देखना, तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। एक है उसको दबा देना, नहीं हमें तो है ही नहीं, कभी कभी आता है। लोभ है क्या, लोभ नहीं है, अलोभ है, नहीं लोभ है। तो अपने आप को झांक कर देखना कि मैं क्या हूं, आईना क्या है मेरे अंदर, ब्रह्मचर्य है या काम है, लोभ है अलोभ है, हिंसा है अहिंसा है, स्वयं को स्वयं देखना, यही सबसे। बाबा कहते हैं हर मुरली में गीत होता है ना, कौन सा, मुखड़ा देख लो प्राणी, क्या क्या अंदर है वो देखना। जैसे वो एक स्त्री का दिखाते हैं ना कहानी, वो स्त्री है वो बिल्कुल कुरूप है, वो बिल्कुल कभी आईना नहीं देखती, कहती है आईने की वजह से मैं कुरूप हूँ, बिल्कुल विश्वास नहीं है उसको आईने पर, वो कहते मैं तो बहुत सुंदर हूँ, कोई उसको आईना दिखाते तो आईना तोड़ देती है, वो कहती है आईना ही गलत है, ये आईना को पता नहीं कुछ। अब ये उसकी सौंदर्य उसका कल्पना है। वो अपने आप को नहीं देख पा रही है, डर लगता है अपनी कमी को देखने में। सामने रखकर स्वयं को देखना, ऊपर से हम योगी बनने का स्टेटस हमारा मेंटेन कर रहे हैं और अंदर से भोग है। संसार के सामने हम कुछ और है, अपने कमरे में अकेले में हम कुछ और है। जैसे ये हमारी जो व्यक्तित्व है खंडित है, एक दूसरों को दिखाने वाला, एक जो हम है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो इसमें मतभेद है, इसके लिए द्वंद है। एक इच्छा है कि बाहर जाऊं, इधर घूमू उधर घूमू, और दूसरी तरफ से दबा के रखा है स्वयं को कि नहीं श्रीमत ऐसे वैसे वैसे, इच्छा नहीं है उठने की अमृत वेला, परंतु फिर भी उठा रहे जबरदस्ती स्वयं को, हर चीज जबरदस्ती कर रहे, जैसे कोई बोझ है, कोई लादा हुआ है, कोई थोपे हुए सारे नियम मर्यादा है, करना है करके करे, जैसे मौका मिले। काम तो अंदर ही बैठा हुआ है पर उसको दबा के रखा है क्योंकि मधुबन में है, क्योंकि श्रीमत है, ये है, जैसे उसको अवसर मिलेगा वो निकलेगा बाहर, वो अवसर कभी भी आ सकता है, वो किधर से भी आ सकता है। कुछ ऐसा देख लोगे अचानक तो वो सारी वासनाएं जागृत हो जाएगी, भड़क जाएगी, फिर पता चलेगा कहां कितना पानी में थे। कुछ चित्र देख लोगे, कुछ सिनेमा देख लोगे, कुछ चित्र कोई एडवर्टाइजमेंट देख लोगे और वही घूमते रहेगा बुद्धि में, वो पिछले बार बताया ना जूते की तरह, क्या हुआ वो दूसरे जूते का, बस वही जूते का क्या, वही ऐसे घूमते रहेगा वो तो कोई भी चीज है ना उसको देखो अपने सामने कि ये है, तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। हमारे अंदर क्रोध आता है, हम जब क्रोध आता है ना क्रोध को नहीं देखते, उस व्यक्ति को देखते जिसकी वजह से क्रोध आए। हिंसा, हिंसा भी ऐसी है, हम कहते हैं हम अहिंसक है, क्या हम वास्तव में अहिंसक हैं? पूछो अपने आप से। हिंसा केवल किसी के छाती में छुरा भोंकना नहीं है, दुख देना ही केवल हिंसा नहीं है, मन से सोचना, हमारे चलने में भी हिंसा हो सकती है, हमारे देखने में भी हिंसा हो सकती है, हमारी मुस्कान में भी हिंसा हो सकती है,
सांस लेने
में। उस तो स्थूल दृष्टि से मतलब किसी को हमने कैसे हम देख रहे हैं उसमें बहुत सारी हिंसा कर दी हमने, देखने में हमारी जो दृष्टि है उसमें भी हिंसा दृष्टि हो सकती है। क्रिमिनल माइंड की बात है ना, अंदर माइंड कैसा है, वायलेंट माइंड, कितना हम हमारे अंदर हलचल है, वो सब हिंसा ही है एक रीति से। 400 प्रकार की हिंसा गिनाई है जैन धर्म में, 400 उसमें बहुत सारी बातें आती है, हम भले किसी को मार नहीं रहे, हम फूक फूक के चल रहे, वही हिंसा नहीं है।
मैं खेल देख रहा हूँ, कोई जीत रहे है, तालियां वगैरह, ये भी तो
हिंसा है। दो लोग झगड़ रहे हैं सड़क पर और हम देख रहे हैं, क्या ये हिंसा है? और दो लोगों का झगड़ा हुआ और जल्दी ठीक हो गया तो हमको थोड़ा सा अंदर रहता है कि और थोड़ा बढ़ना चाहिए था, थोड़ा खून तो निकलना चाहिए था, मतलब वो क्योंकि अंदर हम तो कर नहीं रहे पर दूसरों को लड़ता देख के कुछ तो होना चाहिए दोनों में, अगर जल्दी ठीक हो जाता है एक दूसरे तो थोड़ा मजा नहीं आता है। जैसा जितने वायलेंट मूवीज बनते हैं, क्यों देखते हैं लोग वायलेंट मूवीज, बच्चे वायलेंट मूवीज वायलेंस देखते हैं ना सिनेमा में, वायलेंट नॉवेल पढ़ते हैं, एक्शन मूवीज। एक्शन मूवीज क्या है, अंदर की हमारी हिंसा को तृप्त कर रहा है वो, तो हमारे अंदर इच्छा है वायलेंट देखने का, देखना चाहते हैं हम कैसे हीरो और वो विलियन कैसे फाइट करते हैं, वो देखने में बड़ा आनंद आता है हमको, अंदर ही अंदर बहुत मजा आता है ये क्या हो रहा है, और हम कहते हैं हम तो बिल्कुल किसी को दुख नहीं, बिल्कुल नहीं, शांतम पापम कभी नहीं, किसी को दुख नहीं दिया कभी आज तक, किसी को कुछ बुरा बोला नहीं, नौकर तक को कुछ कहा नहीं आज तक, किसी को कुछ नहीं, सबको प्यार से चलाते हैं। पर ये देखने में बहुत इच्छा है, नॉवेल ऐसी पढ़ने में जो एक्शन नॉवेल है वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, ये भी हिंसा ही है, ये हिंसा के ही प्रकार है सारे।
देखना भी हिंसा,
चलना भी हिंसा हो सकता है, सोना भी हिंसा हो सकता है, हिंसा को देखना ये तृप्त कर रहे हैं। जैसे स्पेन में दिखाया है कि वहां पर वो भैंस और आदमी की लड़ाई होती है और उस लड़ाई को देखने के लिए न जाने हजारों लोग उस अखाड़े में खड़े रहते हैं, और वो जब भैंस अपना सिंह पूरा उसकी छाती में ये करते थे रक्त बहने लगता तो क्या उत्साह होता है दर्शकों में, मार देता है वो मौत की लड़ाई होती है, पूरा उसको सीधा घुसा के मार देता है,
भैंसों को भी गिरा देता है,
वो भैंसों को भी गिराता है, पर वो उसको, पर वो देखने में जो लोग है वो कौन है, कौन है वो लोग, तथाकथित अहिंसक लोग है जो किसी को कभी मारते नहीं, किसी को दुख नहीं देते, हिंसा वो अहिंसक लोग है। तो हमारे अंदर हिंसा भी है, पहले तो ये जानना है कि है, उसके बाद ही पहले पता चलेगी दुर्गति हो गई है तभी सदगति का मार्ग पता चलेगा, कोई मानता थोड़ी ना ऐसा। बुद्ध के जीवन में दिखाया है वो एक ही करवट पर सोता है, तो उसका शिष्य उसको देखता है, रोज देखता है एक ही करवट पर, जो और जहां हाथ रखा बस वही हाथ है, ऐसा ही सारी रात निकल जाती है। वो एक दिन जानबूझकर देखता है, रात भर देखो कहीं हिलाता तो नहीं है हाथ, कहीं करवट बदलता तो नहीं है, और देखता है कि रात भर करवट बदली नहीं, रात भर हाथ हिलाया ही नहीं। तो एक दिन प्रश्न पूछता है कि आपका ये क्या है, आप करवट क्यों नहीं बदलते हो, हाथ क्यों नहीं हिलाते हो? तो बोलते हैं मैं नहीं चाहता अकारण कोई जीव, कोई क्या कहते हो, जीव जंतु, उसकी वजह से, मेरे वजह से उसको मृत्यु हो जाए उसकी। तो बोलते पर ये जो आप सोते हो, हम तो सोते हैं तो हमको पता नहीं चलता है जब हम करवट लेते हैं, तो क्या आप सोते हुए भी होश में रहते हो? तो बोलते मेरा मन इतना शांत हो गया है, इतना शांत हो गया है कि मुझे करवट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, करवटें तब ली जाती है जब मन अशांत हो, जितना मन अशांत हो उतनी ज्यादा करवटें ये सत्य है। जब मन बेचैन है, मन अशांत है, नींद नहीं आती है, इधर से उधर टॉसिंग ऑन द बेड, इधर से इधर, इधर से उधर, कहीं ये करेंगे कभी वो करेंगे, यहाँ तक कि जब हम बैठे हैं और हमारे पैर हिलते रहते हैं ना चेयर पर बैठे, और बहुत पैर, जितना मन अशांत उतने पैर ज्यादा हिलेंगे। कोई योग में बैठा ऐसे फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ये सब अशांत मन की निशानी है। जब मन शांत हो जाता है तो शरीर भी शांत हो जाता है।
डर जाना चाहिए इसलिए
वो जो शरीर की हलचल है वो मन की अशांति का ही दर्शक है, वो दिखा रहा है, प्रतिबिंब है एक मन की अशांति का। तो मन शांत तो शरीर भी शांत। इसके लिए कहा मेरा मन इतना शांत हो गया कि मुझे करवट लेने की अब जरूरत ही नहीं पड़ती।
शांत हो गया ना,
इसके मतलब पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा हमारा मन भी अशांत है। हम जो ये हिल रहे हैं ना, ये तभी करते हैं ऐसा। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरा मन पूर्ण शांत हुआ। अभी तक उस अध्यात्म को हमने स्पर्श नहीं किया है, टच नहीं किया है, बहुत दूर है। पहले ये स्वीकृति आनी चाहिए कि अभी हमने समझा नहीं है। ये हम क्या समझ रहे हैं, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, नहीं है। हाँ त्रिकालदर्शी जी हो गए, बस अभी तो और कुछ समझना बाकी तो नहीं, वही तो वो मुरली अब आपको याद कर। हाँ बाबा ने तो चढ़ा के रखा है, पर स्वयं देखा है मैंने कितना मैंने समझा है, मेरे को सही में ये समझ रहा है या ऐसे ही कुछ तो चल रहा है, ये क्या हो रहा है ये मेरे साथ।
अनुभव करने के लिए बोले जाए सामान के बारे में, अनुभव बहुत दूर के बारे में,
इसकी गहराई में हम क्यों नहीं उतर पा रहे। कुछ तो एक बाधा है, वो बाधा है अपना ही मैपन और अपना ही अहंकार, जो कहता है कि तुझे सब पता है, जो कहता है कि तुम्हें सब पता है। दिन भर में ये एक दुख तो रोज होना चाहिए, बाबा कहते दुखी नहीं हो, पर ये एक दुख रहना चाहिए कि मुझे ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ये बोल क्या रहा है, ये कह क्या रहा है, वो इसमें क्या राज है, इसमें क्या गहराई है, इसमें क्या सत्यता है, मैं कैसे मानूं कि यही सत्य है। ये संशय वाली बात नहीं, संशय तो हमने पीछे छोड़ दिया, अभी ये बात है वो स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न उत्तर करना। अंधश्रद्धा से कुछ भी स्वीकार करना नहीं है। बाबा ने कहा क्रोध खराब है, अरे क्यों खराब है, हमने स्वीकार कर लिया, क्यों किया स्वीकार, किसने बोला था क्रोध, हम कहेंगे क्रोध अच्छा है, अभी चलो अभी गहराई में जाओ उसके, नहीं बहुत अच्छा है, फिर हम थोड़ा चिंतन करेंगे, नहीं उससे क्या नुकसान है क्या फायदा है उसको, कुछ भी इस चीज एक है। मैं वापस कह रहा हूँ ये संशय की बातें नहीं है, ये स्पष्टीकरण के लिए, अपने बुद्धि को अपने मन को बैठकर समझाना। हमने उसको समझाया नहीं अभी तक, बहुत सारी बातें ऐसी अस्पष्ट अलग अलग फोल्डर्स और कॉर्नर्स में रखी हुई है हमारे कंप्यूटर में अलग अलग, और उसको समझा नहीं है, उसको समझना है। इसके लिए एक दुख होना चाहिए कि मुझे ये समझा नहीं है क्या। गंभीर बाबा ने कहा ना, याद कैसी हो, गंभीरता उसमें समझ हो, सचाने वाली अलग, ये गंभीरता, गंभीर है ये ज्ञान, बहुत सूक्ष्म है, बहुत महीन है, बहुत महीन है। जो साधारण वाक्य हमको लग रहे हैं ना, उसमें कुछ तो राज भरे पड़े हैं, बिखरे हुए हैं राज, जैसे इतने राज है उसको कि उसको समझने के लिए शायद मुझे ऐसा लगता है एक एक महावाक्य पे एक एक इतनी बड़ी बड़ी किताब बनेगी, बनेगी तब समझ में आएगा, मतलब बन सकती है, इतना गुह्य राज एक एक महावाक्य में है बाबा। हम उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत ज्यादा, खाली लिख लिया धारणा के लिए पॉइंट, वरदान लिख लिया और याद कर लिया और सुना दिया क्लास में, ये भी बहुत छोटी अवस्था है, या उसकी चर्चा भी कर ली अभी तो भी स्पष्ट इतना नहीं होता है, उसकी गहराई में जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, जब तक उसमें पूरा समाना जाओ, वो पूरा एक रूप हो जाए हमारे अंदर, ज्ञान, ज्ञानमय स्थिति, ज्ञान स्वरूप। कहाँ थे हम, साजन, और फिर उसके बाद थे बंधु और सखा के लिए क्या था, साथीपन का अनुभव, सदा साथीपन का। तो ये पांचों ही संबंध निभाते रहना बाबा से, सदा निभाते रहना मर्यादाओं, संबंधों की मर्यादाओं को निभाते रहना। और फिर बाद में बाबा ने कहा ना, एक बाप दूसरा ना कोई, मनमत परमत जैसे है ही नहीं, मनमत परमत स्वप्न में भी नहीं, टच ना करे, और फिर एक को देखू तो किसको, सुनू तो किसको, बोलू तो किसको, चलू तो किसको, कर्म करू तो कैसे, देखू तो
बाप
एक हो, सुनू तो
बाप
सुनू तो और बोलू तो एक से उसके सुनाए हुए कर्म, करू तो उसके सुनाए हुए कर्म, सोचू तो बस उसका, चलो तो उसके साथ। ये जो चीजें है ना, ये भी बहुत सूक्ष्म बातें हैं सब, एक 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 वाक्य संपूर्णता का है। जैसे अगर उस एक में भी आगे पूरा गहराई में चले गए तो सारा ही ज्ञान उस एक वाक्य में आ जाएगा, ऐसा ही ज्ञान है। और क्या कहा, तो बाबा ने कहा इसका रिकॉर्ड चेक करो, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, खंडित है, अखंड है, अटल है, हलचल है, लकीर सीधी है, टेढ़ी बाकी है। ये था पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड तो हमने बोल दिया पढ़ाई के लिए। तीसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड विठल भाई स्वयं, स्वयं के लिए क्या रिकॉर्ड देना है? कमलेश भाई स्वयं के लिए कौन सा रिकॉर्ड? स्वयं को समान में स्थित करना, जो है जैसा है उस समान में स्थित करना, क्योंकि ये जीवन अलौकिक जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है। तो उसमें बाबा ने समान दिए हैं, गुण कर्तव्य स्थिति के भी समान बताए,
ज्ञान के आधार
पे बाबा ने बहुत सारी बातें बताई ना उसमें, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, स्वदर्शन चक्रधारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, बेहद वर्ष के अधिकारी, प्रॉपर्टी के अधिकारी, प्रॉपर्टी वर्ष के डायरेक्ट, वर्ष के डायरेक्ट बाप के बच्चे, प्रॉपर्टी के अधिकारी, ये सब बताया। और इसके विरोध में कौन से नहीं होने चाहिए? हीन भावना, हीन भावना है। बाबा ने तीन चार गिनाए पर हम उसको विस्तार कर सकते हैं बहुत सारे। जो होने चाहिए वो तो हमको पता है, पर जो नहीं होने चाहिए ना उसका हमको ज्यादा विस्तार पता नहीं, वो हमको स्पष्ट करना है। ये ब्राह्मणों के बहुत रूटीन के शब्द है, हीन भावना है। कौन कौन से? पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? क्या उत्तर मिलता है? ये मेरे से नहीं हो, टाइम नहीं मिलता, इतना बिजी है, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं, सेवा इतनी है, टाइम है ही नहीं पुरुषार्थ करने के लिए। हम भी पहले बहुत करते थे, तुम्हारे जैसे ही पुरुषार्थ करते थे पहले जब आए थे ना इधर, बस ऐसा ही था हमारा। अभी क्या हुआ, अभी टाइम नहीं है, अभी नींद आ जाती है। और ऐसा नहीं बोलते ब्राह्मण, शरीर साथ नहीं देता, अलौकिक भाषा है। ब्राह्मणों की भाषा इतनी सादा नहीं है, उसमें ज्ञान समाहित होता है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर साथ नहीं देता, ये एक और हीन भावना है। हिसाब किताब है, मैंने कहा ना सुबह का, हिसाब किताब का आधार लेते हैं और भविष्य का आधार लेते हैं, क्योंकि योजनाएं बनी हुई है, पुनर्जन्म की योजनाएं जो है ना उसका आधार लेते हैं अपने पुरुषार्थ को छिपाने के लिए या कारण बताने के लिए, पूर्व जन्म का हिसाब किताब, या हमारा पद ही ऐसा होगा, जो होगा तो अच्छा, आज बोला ना वही बोला, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं कमजोर हूँ, हम तो बहुत पीछे आए, अभी क्या कर सकते, बाबा तो अभी बस अभी समेट रहा है, अभी हम अभी आए, अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ी हो सकता है, टाइम नहीं, हमारे बस की बात नहीं। ये बाप समान बनना तो कई लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इसको, मतलब पहले से बुद्धि से निकाल चुके हैं, तो फॉलो फादर और बाप, ये सब जिसको करना है वो कर रहे हैं।
तो देख लिया।
दूसरा, ये इतने सालों से है, इसने कुछ नहीं किया, हम कहां से करेंगे, इनको तो देख ही रहे ना, 20 साल से इधर क्रोध गया नहीं अभी तक। और कौन सी हीन भावना है? शिवानंद भाई
कमरे वाले भी सोते रहते हैं।
कहाँ किसको पुरुषार्थ करना है, इंटरेस्ट कहाँ है किसको पुरुषार्थ करना है, छोड़ो ना। हाँ कहा खर्राटे इतना लेते हैं कि
किसी को कारण बनाते
हैं, अपना मतलब दूसरे के ऊपर थोपना,
ये बिगड़ डालता,
ये है मेरे पुरुषार्थ न होने का कारण, बस यही है वो,
ये एड्रेस हो जाएगा
बस, इसको बाबा आप कैसे भी करके इसको यहाँ से हटा दो, वो दिखा। विश्व युद्ध होने के बाद में तीन देशों के तीन एम्बेसडर भगवान के पास पहुंचते, अमेरिका, रूस और नहीं जापान में, वो तो एक ही ग्रुप था ना, एक तो अमेरिका से, एक रूस के और ब्रिटेन, ये तीनों के तीन बाबा भगवान के पास पहुंचते हैं। तो पहला कहता है रूस वाला कि मेरी, भगवान कहते क्या इच्छा है, तो बोलते अगर तीसरा महायुद्ध हो जाए ना, तो ये जो अमेरिका वाला कहता है कि ये रूस खत्म हो जाए पूरा की पूरा। फिर रूस वाला बोलते है तुम्हारी क्या इच्छा है, भगवान पूछता है, बोलते अगर तीसरा महायुद्ध हो गया ना, ये अमेरिका वाला जो है ना ये पूरा खत्म हो जाए, रहे ही नहीं, अमेरिका पूरा नष्ट हो जाए। फिर ब्रिटेन वाले को पूछते तेरी क्या इच्छा है, बोलते इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो बस। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, बस इन दोनों की इच्छा आप पूरी कर दो। कौन सी पॉइंट चालू थी हमारी, मैं पॉइंट ही भूल दू, हाँ हीन भावना है, इसको हटा दो बस। और दूसरी और हीन भावना ये है ना, ये हमको योग करने नहीं देते। सेंटर में कुमारों का ऐसा ही होता है ना, वो नीचे एक भाई है वो कहता था जब भी सेंटर में था, पहले बहुत साल कई साल सेंटर में था, जब भी योग करने बैठता था सूक्ष्म वतन तक जाते ही नीचे आना पड़ता था। क्यों बहन जी सब्जी लेके आओ पानी वालो ऊपर जाने नहीं देते थे। जब भी योग में बैठो तो कोई ना कोई बुला ही लेता है, मुरली में बैठो तो सहन नहीं होता है लोगों से, मतलब चलो 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 ये करो वो करो इधर जाओ उधर जाओ। नियम संहिता है ना ब्रह्मा कुमारी समर्पित बहनों की, उसमें नियम है एक समर्पित बहनों के लिए, सेंटर की बहनों के लिए, अगर कोई भी भाई या बहन स्टूडेंट अगर योग में बैठे हैं या मुरली सुन रहे तो बिना अकारण उनको उठाना नहीं है, जो नियमित कार्य उनके लिए नहीं उठाने, अगर बहुत महत्वपूर्ण कार्य तो ही उठा। अब जो कार्य एक घंटे के बाद भी हो सकता है, बाद में भी बोलते हमको पता है 6:30 7:30 या भाई भाई योग करता है, हम उसी में जाएंगे उसको फोन करेंगे। वो भी आवाज नहीं सुन लेना, वो सहन नहीं करते। अगर कोई भाई पुरुषार्थ की बातें कर रहे या पुरुषार्थ करते रहे तो वो तो सेवा फर्स्ट, ठीक है सेवा है, पर कोई अगर योग कर रहा है तो उसको करने दो। डॉक्टर को भी फोन आते ना रात को 2 बजे, क्या फोन, 3 दिन से पेट साफ नहीं हुआ, रात को 2 बजे याद आया उसको कुछ तो दवाई दो। भारी बहुत भारी शुभ भावना है, फिर महान चिंतन करना पड़ता है, एक महान आत्मा है ये, देवकुल की महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, चौथा रिगार्ड जो है ना वो सारे पॉइंट्स लाने पड़ते हैं बुद्धि में। या फिर फोन आता है किसी बहन का, हाँ मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही, हाँ बोलिए, आपने गोली लिखी थी 4 महीना पहले, हाँ मुझे तो पता नहीं अभी, अब वो 8 बजे लिखी थी 9 बजे ले लो, ले लो। उनको पता नहीं ना, योग का टाइम सबको पता है 6:30 से 7:30 है, बराबर 7 बजे जिसको जो भेजना है सुबह सुबह 4 और 5 के बीच में। ये आश्चर्य होता है ये योग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये भी तो ब्राह्मण ही है, वहां पर थोड़े प्रश्न उठते हैं फिर।
वो आपकी परीक्षा
देखिए ठीक से कर रहे हो,
ठीक है
ये डॉक्टर उठे
डॉक्टर उठे कि नहीं उठे। और कौन सी हिंदी भावना
है, संहिता तो पढ़नी चाहिए अच्छी तरह,
हर 6 मास में रिवाइज करने के लिए बाबा ने कहा, नहीं बाबा ने दादी प्रकाश मुनि के जो इंस्ट्रक्शन है ना उसमें दादी जी के इंस्ट्रक्शन है 2005 के वो बुकलेट, हर 6 मास में हर सेंटर में वो रिवाइज होनी चाहिए, बहनों का बहनों के साथ, टीचर्स का टीचर्स के साथ, स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ, वो भी जरूरी है महत्वपूर्ण। हाँ सबका है, इधर का भी होगा सबका होगा, पर वो भूल जाता है ना, बुद्धि में रहता कहाँ, पढ़ने की बात नहीं है खाली, एक जन बैठा और पढ़े और सब सुने इतना भी इतना पर्याप्त नहीं है, उस पर चर्चा चाहिए, उस पर डिस्कशन चाहिए, एक एक क्योंकि एक एक पॉइंट पे 10-10 प्रश्न निकलेंगे,
वो धारणा की चीज है,
वो धारणा की चीज है, एक एक प्रश्न पर बहुत सारे ये निकलेंगे, उसमें बहुत सारी बात, किसी के साथ एकांत में बैठकर बात नहीं करो, ये एक ही वाक्य में कितने सारी चीजें निकल सकती है, फिर इसमें फोन पे बात भी हो सकती है, फेसबुक भी हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है।
नियम बदल गए, फेसबुक पहले था ही नहीं,
था ही नहीं, क्योंकि ये जब आचार संहिता सब जब बनी तब ये व्हाट्सएप और ये था क्या, ये तो अभी निकला है, तो वो समझने के लिए कि ये करना भी उसी का उल्लंघन है, ये और वो एक है, ये बुद्धि में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं है। तो हमने उसको ना उसके ऊपर सोच रहे पर हम उसको कर रहे और करते करते उसमें फंस रहे, पर ये लिखा नहीं है। पर नहीं, उस पर चर्चा चाहिए, क्योंकि सभी संवेदनशील है, ग्रहण कर लेते हैं तुरंत, पर उनको पता तो चले ये बात।
ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा उसमें।
हाँ, तो आप एक अभी नया बना दो आपका अपडेटेड वर्शन कि क्या क्या होता है इसमें, 1 2 3 4 ये सारी चीजें उसमें।
नहीं, पता भी है कि इस चीज से हमारा कितना टाइम जा रहा है।
वो ही कहा ना, ये जो है एक बंधन में बंधती आत्मा, और वो जो बंधने के बाद में उसमें निकलना बहुत मुश्किल है। वो सही में फंसने के बाद, जैसे हमको लगता है ये स्मोकिंग बीड़ी से क्या होता है, हमको तो जैसे हमने कभी पिया नहीं, आदत नहीं, हम सोचते हैं देखो ये क्यों पीते हैं लोग, कितना आश्चर्य लगता है। और जो पी रहा है वो उसके बिना जी नहीं सकता है, उसका पूरा शरीर डिमांड करता है, तलब उत्पन्न होती है, वो नहीं रह सकता है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं अल्कोहल अगर नहीं लिया तो। कितने पेशेंट्स आते हैं इधर, उसके माँ बाप रोते हैं आके उपड़ी में, फिर कुछ शराब वाले तो इतना बुरा हालत है, और माउंट में तो बहुत है शराब, बहुत ज्यादा है। जितने ये जो नक्की थे, जितने ये जो कैमरा वाले हैं, ये सब शराबी है। चित्तू में ये घूमने वाले हैं, घोड़े वाले, यहाँ बैठने वाले, ये सब जो माउंट में जितने हैं ना, कम से कम कितने होंगे, 500-600 ऐसे लोग हैं जो फुल शराबी। एक तो पूरा ग्रुप ही है 11 लोगों का, उसमें से 2 लोगों ने तो शरीर छोड़ दिया, अभी वो जो बाकी जो बच्चे हैं वो भी तैयारी में है पर छोड़ नहीं सकते, चाहे दवाई दो कुछ भी दो। हाँ, वो बड़ा मुश्किल है, वैसा जैसा वो आदत है ना, वैसा ये भी एक आदत ही है।
अभी ये भाई आया था एक पंजाब से, एक साल में उसने 11 लाख रुपए खर्च किए समय पे।
हीरोइन, ड्रग एडिक्ट, इंजेक्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे, चरस, गांजा, ओपीडी में बहुत आते हैं, यही सब आते हैं। ये जो ये पूरा राजस्थान है, वहाँ से पेशेंट जो आते हैं, चरस, गांजा। एक तो पेशेंट, एक साधु, वो नीचे जो मंदिर लगता है ना, जाते जाते एक मंदिर लगता है, कौन सा मंदिर है वो छोटा सा एक मंदिर, वहाँ एक साधु रहता है, वो आया हॉस्पिटल में भर्ती था, और वो मतलब वो कुछ भी कुछ लेते हुए बीड़ी, चरस, गांजा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लेता। और एक दिन उसकी जो थैली थी उसमें से इतना डब्बा निकला, उसमें पूरा एक पाउडर भरा था, वो चरस था पूरा। हाँ, वो लेता था, वो बोलता था ये बहुत अच्छी दवाई है, इससे सब बीमारियां ठीक होती है। आपने छुपा दिया, कोई कोई बाथरूम में जा जाके खाते है। तो ये आदतें ऐसी है, इसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल।
तो भाई विदेश में, या विदेश में जाके ढूंढ लिया उसने कहा।
हाँ, वो तो जिसको जो चाहिए वो तो कैसे भी करके ढूंढता है, पागल हो जाता है अगर वो नहीं मिला तो, कैसे भी करके ढूंढेगा। तो जैसे एक बार आदत कोई पड़ गई ना, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। फिर उसके लिए तो मतलब पहले तो उस, अगर वो आदत ऐसी है, उसको पहले सोचना पड़ेगा, प्लानिंग बनाना पड़ेगा, मदद लेनी पड़ेगी किसी से। और यहाँ पे मदद किससे ले, हम किसी को ये बताएं, ये तो पहले ये मान ही ले रहे कि ये आदत है, पहले तो ये स्वीकृति कि हम इसमें फंस गए, ये फर्स्ट रियलाइजेशन कि मैं फंस गया हूँ, अब मुझे निकलना है, ये संकल्प, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया। ये तो मानना ही नहीं, मान ही नहीं रहे कि हम फंसे हैं, हम ही राइट है। तुमको क्या पता, तुम अभी आए हो, हम पुराने हैं, हमको सब पता है क्या क्या करना होता है कोई उनको सिखा थोड़ी सकता है, कोई नहीं सिखा सकता। यहाँ तो इसके लिए कहा ना, सबसे पहले योग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान। ज्ञान को ही समझो, इसकी इतनी गहराई में जाओ कि ज्ञानी जो है वो योगी स्वतः ही है, चलता फिरता योगी है। उसके बाद और क्या बोला, कहा थे हम, हाँ, हीन भावनाएं। ये ऐसे बहुत सारी हीन भावनाएं, मतलब समान के विरुद्ध में जो है वो सब हीन भावनाएं, जो हम समझते हैं ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, मुश्किल समझना, असंभव समझना, ये भी मतलब पढ़ाई का भी डिसरिगार्ड है उसमें, हीन भावना में वो भी आ जाता है। हमको तो याद नहीं रहता है ये, हाँ बोल ली तो याद नहीं रहता, 5 बार पढ़ी पर पूछना मत क्या है, पता नहीं वो क्या है, क्या बोलता रहता है बाबा, ये भी हीन भावना में ही है। तो इसके लिए अगर याद नहीं है ना, तो उसको बार बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक वो याद ना हो। कोई कारण नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई बहाना नहीं दे सकते कि मुझे नहीं पता क्या था। अगर नहीं पता चल रहा, अच्छा चला, कोई कम बुद्धि भी है, पर डल बुद्धि है तो फिर वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो है ही ना। चलो धीरे धीरे करो, आपको किसी को एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, किसी को बस सुना एक बार और छप गया पूरा प्रिंट, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं ना कुछ, सीधा डिस्कशन। ऐसा भी हो सकता है, कोई है कि जिसने एक बार पढ़ा पता ही नहीं क्या है, क्या पढ़ा, पूछो तो कुछ नहीं शब्द। पहले तो भाषा भी सीखनी पड़ेगी। पुरुषार्थ में करने के लिए ये बात कोई नहीं बताता कि भाषा भी सीखनी है। कोई सिखाता है? हिंदी को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान भाषा में कैद है। कोई भी पुरुषार्थ की क्लास में कोई ये नहीं सिखाता कि हिंदी सीखो, हिंदी को समझो, हिंदी के चिंतन को, हिंदी के रीडिंग को और राइटिंग को बढ़ाओ, ये कोई नहीं सिखाता। और जब तक ये ना हो तब तक वो ज्ञान ज्ञान ही रहेगा, बस उसमें ही रहेगा, लॉक्ड कैद में रहेगा। उसको रिहा करना है, उसको समझने के लिए भाषा को सीखना पड़ेगा। जगदीश भाई ऐसे ही थोड़ी इतनी किताबें लिख पाए, तो भाषा को समझाना पड़ेगा, तभी बाबा के भाव को भी समझ सकते हैं ठीक से, शब्दार्थ को भी और भावार्थ को भी, दोनों चीजें समझ, शब्द को भी समझना है, शब्द शब्द में ही खेल है। तो किसी भी भाषा को भी समझना है। तो हिंदी भाषा, बाबा हिंदी में बोल रहे, इंग्लिश को छोड़ दो, हिंदी को ही स्टडी करो, हिंदी के ही विस्तार करो, हिंदी के ही अच्छे अच्छे शब्द जो है उसमें, उसके ऊपर चिंतन करो, तो भी हमारा ज्ञान समझने का जो लेवल है ना, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नहीं तो देखो, कोई साउथ इंडिया का कोई है भाई, उसको बोलो क्या है मुरली में, अभी उसको हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है, तो समझ उसको, हाँ वो आता आती, वो साउथ उड़ीसा वाले शिव बाबा आती है, ब्रह्मा बोलती है, ये सब चालू हो जाता, मतलब अभी वो नपुंसक और स्त्रीलिंग ही समझ में नहीं आया, वो है, तो ज्ञान को कितना समझ पाएंगे,
निर्लिंग कर दिया।
हाँ वही, ज्ञान को कितना समझ पाएंगे, नहीं समझ पाए, वो उतना ही, उसका लेवल उतना ही, डल बुद्धि। इसके लिए ये भी नहीं कोई बहाना दे सकता मेरी बुद्धि डल है। ट्रांसलेशन अब वो है, फिर अपनी भाषा में, मैं कह रहा हूँ कोई भी एक भाषा में हमारा मास्टरी हो, फिर अपनी भाषा में, पर भगवान की भाषा कौन सी, अभी संगम युग की बात, चलो आप एक भाषा से दूसरी, अभी विदेशियों को क्या उतना ही रस आता होगा जितना हमको आता है? माया आ सकती है तो माया आ सकती है, इफ देयर इज एन अट्रैक्शन माया कैन कम, इस वाक्य में कितना रस है और इसमें कितना रस है, आ सकती है तो माया आ सकती है, कितना रस है उसमें, इस वाक्य में एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, अर्थात एक बोतल में ये है सेंट फ्रेग्रेंस अत्तर, उसको दूसरी बोतल में डालना है, आधा तो उड़ गया डालते डालते ही लिंक पर, चलो लिंक टूटा पर अर्थ तो उनको भी समझ में आता है, पर जो रस हिंदी में है वो भाषा को ट्रांसलेट करने में थोड़ी हो तो खो गया आ रहा
है।
इसके लिए तो हिंदी सीखते, हिंदी में जो रस है, हिंदी जो बाबा की हिंदी है वो तो अलौकिक हिंदी है, वो तो संसार में भी नहीं है इस तरह की हिंदी का। और कुछ कुछ विदेशी ऐसे है कि जिन्होंने बिल्कुल हिंदी सीखी नहीं, अभी 50 साल हो गए, वो बस उसी में पकड़ लकड़ेगा। और कुछ कुछ है तो जो समझना चाहते, बाबा ने जो भाषा में बोला ना वही भाषा में हम समझेंगे।
एक मैम 6 महीने हुए भी रशिया से आई थी, संतोष मैं हिंदी में सारा गाना, हमको एक भी गाना नहीं आता अभी हिंदी में,
पूरा गाना। मतलब भाषा को सीखना एक अनिवार्य शर्त है ज्ञान को समझने की, ये कोई भी पुरुषार्थ की क्लास में कोई भी नहीं सुनाता, पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाषा को समझना, कौन सी भाषा है, ये भाषा क्या है, भगवान कैसे बोल रहा है, वो जरूरी है। तो हमसे हीन भावना के ऊपर, फिर लास्ट में चौथा रिगार्ड संबंध संपर्क सब आत्माओं के लिए, ब्राह्मण है या फिर दूसरी आत्मा, ब्राह्मण अब्राह्मण, समर्पित असमर्पित गैर समर्पित, मधुबन निवासी सेंट्रल निवासी, पुराना ज्ञान में नया ज्ञान में, बीके नॉन बीके, हाँ मतलब सबके लिए हमारी समान दृष्टि हो, समान सब समान। कौन सी 13 भावनाएं बताई उसने, कौन कौन सी है बोलो, गिनाओ ना, कौन कौन सी भावनाएं होनी चाहिए, भावनाएं नहीं रिगार्ड कैसे, हाँ क्या
रिगार्ड,
कौन सी भावना है वो, सबसे पहले तो
हाँ इसमें आज की मूवी
ना
आगे बढ़ाने की ऊंचा उड़ाने की उपमान देने की हिम्मत उसमें आ गया वो तो विश्व कल्याण की भावना और
बेहद की कामना
बेहद की विश्व कल्याण की कामना और दूसरों के विशेषताओं और गुणों को देखना अवगुणों को ना देखना अगर अवगुणों को देखते हो तो अपनी शुभ वृत्ति और शुभ चिंतन से उसको परिवर्तन करना अपनी स्मृति की समर्थि से दूसरों को सहयोग देना अगर दूसरों के अवगुण देखते हो कमजोरी देखते हो तो उसको अपना अवगुण अपनी कमजोरी समझकर उसको फैलाना नहीं समाप्त करना उसमें सहयोग देना ये फैलाना नहीं वातावरण में छोटी बात को बड़ी मत करना
पहाड़ को
तो क्या करना बड़ी को छोटी करना और छोटी को क्या करोगे संजय भाई
खत्म
बड़ी को छोटी और छोटी को खत्म ब्राह्मण क्या करते उल्टा करते जो है नहीं उसको छोटी करते जिसका अस्तित्व ही नहीं है वहाँ अस्तित्व क्रिएट करते ये है और फिर उसको और विस्तार करते तुमको विस्तार करना है ज्ञान के महावाक्यों का बातों का नहीं चिंतन की कला और फिर हीन भावना ये है ये भी एक है मेरा चिंतन नहीं होता है मुरली पढ़ते पर चिंतन पता नहीं कैसे करना कैसे करते हो तुम हमको तो आते ही नहीं चिंतन होता ही नहीं चिंतन चिंतन करने जाते तो रुक जाते हैं बुद्धि काम ही नहीं करती है भाई अच्छा काम नहीं करती तुमको अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो रात भर चिंतन करते हो ना उसके बारे में फिर चिंतन की कला तो है क्या क्या सोच लेते हो उसके लिए षड्यंत्र बना देते हो रात भर हम उसके डिपार्टमेंट में गए उसने हमको ब्रेड नहीं दी हमको टोली नहीं दी अभी रुको आने दो उसको फिर देखते क्या करना है कुछ तो करेंगे सूक्ष्म बदले की भावना
चिंतन करने कितनी अच्छी कला ये भी सोचने
माताएं कितना चिंतन करती है रात भर बैठ कर अगर दो माताओं को बिठा दिया जाए तो सारी दुनिया की बातें करती है और उनको बोलो ज्ञान की पॉइंट तो ऐसा हाथ करती है वो होता ज्ञान याद ही नहीं रहता वहां बोलते अभी बुढ़ापा आ गया ना इसके लिए याद नहीं रहता बुढ़ापे की वजह से बुद्धि थोड़ी कम हो गई है मतलब याद नहीं होता पहले वो तो याद रहता अच्छा वो उसकी शादी में कितना क्या मिला वो सब याद है वो साड़ी कितनी की थी वो भी याद है उसने क्या दिया दहेज दिया कितना दिया वो सब याद है पूरा घर गृहस्थी का सारा अगर निकालने बोलो ना ये खाना बनाते बनाते रोटी बेलते बेलते सारा निकल जाएगा बाहर प्रश्न उत्तर अगर करो तो वहां का बुद्धि कहाँ से आई फिर वो कहाँ से आई हाँ तो सब निकल जाता है ये साड़ी कितने की है कौन सी दुकान से ली कितना बोल रहा था वो 400 बोल रहा था फिर 300 में कैसे खरीद के लाई सब याद है बुद्धि है ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास बुद्धि नहीं है उसको कहा मार्ग में लगा उसको यथार्थ यूज करो ये सारी भावनाएं फिर और एक था पहले आप ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है किसमें किसमें पहले मैं और किसमें पहले आप पुरुषार्थ में पहले मैं महिमा अगर हो रही है उसमें पहले आप उल्टा मत करना दिखा देना कौन क्लास में सुना रहा था एक भाई एक बहन अभी ट्रेन में चढ़ने वाले वो बोल रहे पहले आप वो बोल रहे पहले आप और ट्रेन निकल गई वो वैसा भी नहीं चाहिए वो लेडीज है तो पहले आप वो बड़े भाई साहब आप हो तो पहले आप
ट्रेन
चल गई फिर भाग भाग के पकड़ो वो वैसा ही हो गया ना जो बहन टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज कराती है सब जगह वो कौन है राम कौन से भाई है नीचे वो बता रहे थे राम श्लोक भाई बता रहे थे टाइम मैनेजमेंट पे कोर्स करने चली ट्रेन एक जगह रुकी और वो कुछ खरीदने गई और ट्रेन छूट गई क्या कराने जा रही है ट्रेन से किसी जगह टाइम मैनेजमेंट पर कोर्स और एक जगह ट्रेन रुकी और वहां इतना लेट कर दिया कि ट्रेन भी छूट गई दुनिया को सिखाने चल रहे कैसे समय को मैनेज करें फिर और क्या कहा ये हो गया सबको सम्मान देना अपनेपन की भावना आत्मिक स्वरूप की भावना प्रेम सहयोग की भावना कल्याण की भावना
जीवन का आधार है
हाँ ये पॉइंट चढ़ती कला का आधार है रिस्पेक्ट तो यहाँ देना ही लेना है एक दो दस बाव जो अभी देंगे वही अभी अभी विश्व कल्याणकारी फिर विश्व महाराजन फिर पूज्य रूप में प्रसिद्ध होंगे फिर कर्नाटक वालों के थोड़ा बोला बाबा ने ये धरनी
भावना
वाली धरनी है, दो तीन बातें उसमें। अभी वृद्धि को करो, पालना दो, महावीर बनो उसमें, पालना पालना देने में महावीर, वृद्धि तो हो रही है अभी, पालना देने में महावीर, फिर उसमें स्नेह और शक्ति के बैलेंस के लिए भी बुलाएगा। फिर ग्रुप नंबर वन बाबा ने देखो, बाबा हंस का उदाहरण दे रहे हैं, कमल का उदाहरण दे रहे हैं, परवाने और शमा, मतलब प्रकृति के उदाहरण ही है सारे। प्रकृति में कमल है उसके जैसा बनो, प्रकृति में वो परवाना है उसके जैसा बनो, वो जीव, प्रकृति में वो हंस है उसके जैसा बनो। हंस निरशिर अलग, व्यर्थ समर्थ अलग, कंकड़ और रत्न अलग। तो तुम भी व्यर्थ को छोड़ो, व्यर्थ को धारण नहीं करो, समर्थ को धारण करो, बाप के गुणों को धारण करो, सबके गुणों को धारण करो, शुद्ध आत्माए हो, पवित्र आत्माए हो, आचार व्यवहार
शुद्ध
होना चाहिए तुम्हारा, किसी भी अवगुण अवगुण धारण नहीं करना, शुद्ध दुनिया में चलना है तुमको।
बाप के और अन्य सब आत्माओं के गुण,
हाँ बाप के हो, बाप के भी गुणमूर्त, जैसे बाप गुणमूर्त है तुम भी गुणमूर्त बनो,
तभी विजय माला।
हाँ तो उसके साथ में ये माला को विजय माला के साथ में जोड़ा हुआ, गुणों की माला विजय माला, गुणों की माला पहनाओ। किसको? दो दिन पहले वरदान था,
जलाने
करने वाले, अपमान करने वाले, निंदा करने वाले, बुरा बुरा बोलने वाले, खराब खराब बोलने वाले, सामने अच्छा बोलने वाले और पीछे जाकर हमारी बदनामी करने वाले जो लोग जो हमारी स्तुति करते हैं उनके लिए शुभ भावना रखना कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारे सामने अच्छा बोलते और पीछे जाके हमारी ग्लानी करते हैं उनके लिए शुभ भावना रखना बड़ी बात है। बाबा ने कहा उनको पहनाओ, तब तुम उसको जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित करते हो। वही तो, पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं है ऐसी जो आत्मा है ना, जो हमको असमय तकलीफ देती है, ये पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, हम योग में बैठे और बुला रहे हैं, हम मुरली में बैठे और बुला रहे हैं, हमको कुछ और करती है,
उस समय भारी पड़ जाती
है वो वहाँ पे।
बहुत ही अच्छा योग लग रहा है, बहुत अच्छा। अब जो सेवा वो पाई पैसे भी नहीं, वो एक घंटे बाद की जाती
है। सेवा मतलब वो एक घंटे के बाद भी
हो सकती है। अच्छा, वो जो सेवा की जाती है उसका मालूम होता है, इसका कल रिजल्ट है भी नहीं, वो तो ऐसे ही थी।
उसमें दो भाग है, अगर आप जूनियर है और सीनियर है तो क्या होगा, अगर आप इंचार्ज है तो जिसने बुलाया फिर क्रोध के भाजन बनेंगे सबके सब, क्रोध करेंगे उन पर, ये कोई काम था इसके लिए बुलाया मुझे, अगर सीनियर है, और जूनियर है तो अंदर ही अंदर दबा देंगे, मरना पड़ेगा, फिर सोचेंगे ये खुद तो योग करते नहीं, हमको भी नहीं करने देते, फिर बाबा को शिकायत करेंगे, ये क्या पता नहीं इनके साथ क्या हिसाब किताब, पता नहीं कब ये हिसाब किताब इनके साथ हमारा चुप्त होगा, यही मिलने दे गया ये बाबा से। वो थियोरी तो सबको पता है, कौन है ब्राह्मण जिसको थियोरी पता नहीं है, थियोरी किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है।
अभी एक दिन दो दिन तीन दिन अब लगातार ही खराटे लेंगे, क्या होगा?
कोई हमारे बाजू वाला एक दिन वो खराटे ले रहा है, दूसरे दिन तीसरे दिन,
कभी तो बस करो,
कभी तो हमारी भावनाएं शुभ से अशुभ में हो सकती है, तो वहां पर ये ज्ञान यूज करना।
एक बार साइकिल चला तो फिर
वो निगेटिव का आज बोला ना वरदान में, एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा, फिर व्यर्थ को धारण नहीं, वो व्यर्थ ऐसी चीज है, निगेटिव ऐसी चीज है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। शुभ चिंतन करने के लिए एकांत चाहिए, मौन चाहिए, बहुत गहरी एक सूक्ष्म श्रेष्ठ अवस्था चाहिए जिससे ज्ञान का चिंतन हो सकता है, पर व्यर्थ के चिंतन के लिए यह सब की आवश्यकता नहीं है, वो तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते स्वतः ही होती है व्यर्थ चिंतन, इतना उसमें शक्ति है।
याद आनी चाहिए
आज वो आगे वही है। ये हो गया बाबा ने कहा ये होली हंस के बारे में, दूसरा पैराग्राफ। हाँ फिर आगे चल के उन्हीं को हुई होली में कहेंगे, संबोधित उनको हुई होली में कहेंगे। ये एक फिर दूसरा कमल, जो न्यारा है वही प्यारा है। बाबा ने कहा तुम्हारा प्यार कम है क्योंकि तुमको मेहनत अगर करनी पड़ती है, अगर मुश्किल लगता है तो प्यार कम है। ये मानेगा कोई?
ये तो बाबा सभी कार्य करते हैं।
बाबा कहते सबका प्यार है तो हाथ दो दो उठाते हैं। परमात्मा प्यार पर गहरी गहरी मुरलियां चली है, वो अगर पड़े तो फिर थोड़े कदम पीछे हटेंगे। तो जो जितना न्यारा वो उतना बाप का प्यार, उसी में वो कंबाइंड वाली बात कही है ना,
कंबाइंड की बात।
जैसे जहां भी जाओ दोनों की जैसे मेला है, बाप और बच्चों का जैसे कंबाइंड है, जैसे अलग है ही नहीं,
भूलना
मुश्किल हो जाए, सताने वाली याद,
जहाँ देखे वहाँ बाप ही बाप,
जहाँ देखे निरंतर, जहाँ बाप ही बाप, ऐसे निरंतर योगी बने। निरंतर योगी। चलिए फिर चौथा, तीसरा राजू भाई कुछ तो बोलो, तीसरा सेवा में विघ्न के कारण युक्ति राज
क्या बोला
आज नहीं बोला है वो कल परसों बोला था आज क्यों बोले नहीं नहीं वो दूसरी बात बोल रहे
हैं युक्ति राज क्या बाबा
नहीं 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 वो कल कल के इसमें था शायद साकार में था वो युक्ति राजबाज नहीं मैं भूल गया
युक्तिबाज
युक्तिबाज बाबा युक्तिबाज
कल था कल था
हाँ कल के साकार बने हुए
युक्तिबाज
विघ्न के कारण बैलेंस नहीं है यही कारण है सारे लोग किसमें लगे हुए सेवाओं में लगे हैं उसमें स्व सेवा रही है स्व स्व का प्लानिंग फर्स्ट उसके बाद में विश्व सेवा का प्लानिंग कोई फिर कमेटी बनाओ बोला ना
धारणा
की अपनी धारणा की कमेटी बनाया और लास्ट परवाना और इसमें अंगद वाली भी पॉइंट है ना नाखून नाखून संकल्प भी नाखून भी ना हिलाए माया चाहे कितना भी हिलाने की कोशिश करे वो उसी में प्यार की इसमें फिर क्षमा और परवाना क्षमा की क्या है परवाने की नियति क्या है
समा जाती है
मिट जाना समा जाना
बार बार मतलब फिर भी लाइफ पर जाता फिर दिल तक फिर मर जाता
हाँ ये इसमें ना मेरा एक पर्सनल अनुभव एक गीत है ये हिंदी फिल्मों में गीत है ना क्षमा कहे परवानो परवाने से परे चला जा मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ वो नहीं रुकता उसको जल जाना होता है प्यार दीवाना होता है ये गीत है ना जब मैं यहाँ चार पांच साल जब इधर आ रहा था ज्वाइन करने तो कई लोगों ने कहा इधर नहीं आऊ वो तो ना यही सभी जो भी मिलते थे एक ही चीज कहती थी यहाँ नहीं आओगे तुम विदेश में जाओ यहाँ जाओ वहां जाओ ऐसे करो ऐसे करो और जब मैं ऊपर आ रहा था तो गाड़ी में ये गीत बज रहा था मतलब जब कभी मिलने आ रहा था कि सोच ले अभी मिलने बात करने फाइनल आ रहा हूँ तो गीत चल रहा था क्षमा कहे परवाने से परे चले जा मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है कोई गीत है गायक है क्या इधर कोई अच्छा गीत है सब है इधर कौन गायक है बेटा नहीं गाने के लिए अभी गाने के लिए वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है तो वो तो उसको तो जलना ही है
जलना ही है
वो सुनेगा नहीं किसी की वो जलेगा ही चाहे कोई कुछ भी करे तो संसार के गीत भी बाबा कहते हैं ना गीत लिखने वाले कोई और गाने वाला कोई और सुनने वाले कोई और अनुभव तुम कर रहे हो जानकी दादी कहती है ना हमेशा गीता की गाया किसी ने दादी इस तरह से कहती है अनुभव तुम कर रहे हो यहाँ बैठकर मुखड़ा देख ले पुरानी जीना मरना तेरी गली में इस तरह से हाँ उनको और क्या बोला उसने वो देहभान को मिटाने वाले वो तो परवाना जो होता है वो
देवान को
मिटाने हाँ वो फिदा होता है तुम बाप समान बनते हो समा जाते हो
देहवान को
मिटाकर और फिर भाग्य की बात कही ना भाग्य ने बाबा ने कलम जितना भाग्य बनाना चाहो बनाओ ये समय को वरदान है समय को वरदान है जितना भाग्य बनाना चाहो बनाओ
विश्व के भाग्य में जाता
हुआ हाँ ये एक पॉइंट उसमें कहाँ रह गया कहाँ आया ये पॉइंट ये वरदान में है वो नाम मान शान के भिखारी का भिखारीपन का त्याग करने वाले ही विश्व के भाग्य विदाता बनते हैं अल्पकाल के नाम मान शान से नहीं आ रहा ये जो बनेंगे वो विश्व के प्यारे स्वतः ही बनेंगे
कितना बड़ी बात
विश्व के भाग्य विदाता कितना बड़ा वर्ड है ये शब्द कितना बड़ा विश्व के भाग्य विदाता पर कौन नाम मान से भिखारीपन से जो मुक्त है यही तो सबसे बड़ी बात है ज्ञान में आने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के बाद पवित्र रहने के बाद में ज्ञानी योगी तपस्वी सब कुछ करने के बाद में फिर सफलताओं का युग चालू होता है क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में और फिर वहां पर मैं बनाता हूँ मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये सब जो है ना, ये सब सूक्ष्म बातें हैं। और क्या बोला?
जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो संपूर्ण रूप में आना ही
है। हाँ, हाँ, वीर वरदान में है ये सब, संपूर्ण कर्म का फल तो मिलना ही है, पर कच्चा फल क्यों ये? पर कच्चा फल जो है ना बड़ा टेस्टी लगता है, वही चाहिए। अगर हमने बहुत सेवा की और हमारा नाम नहीं हुआ तो नाम छपना चाहिए, पोस्टर लगने चाहिए, ज्ञानामृत में फोटो आना चाहिए। एक भाई तो मेरे इतना पीछे पड़ गया था, उसको पता नहीं वो कौन से ज्ञानामृत में, मैंने एक बार बता क्या दिया उसको कि आपका फोटो छपा है, वो भी बस खड़ा था, एक बहन दूसरे किसी को राखी बांध रही थी हॉस्पिटल के हमारे, उसका फोटो था, वो दो महीने तक कहा है वो कौन सा ज्ञानामृत था, वो ज्ञानामृत कहा है, उसका नंबर क्या है, उसका फोटो कौन से पेज पे छपा था, वो ढूंढा मैंने, मिला ही नहीं, क्योंकि मुझे किसी और ने बताया था कि आपके उनका फोटो छपा है, तो मैंने बोल दिया ऐसे कि आपका फोटो छपा है, तो मैं उसको फोन लगा रहा हूँ, बताया ढूंढो कौन सा ज्ञानामृत है वो जिसने इनका फोटो छपा है। नहीं वो पता नहीं, वो कितनी बार ओपीडी में चक्कर लगाया कौन सा ज्ञानामृत है, मैं बोला उसको पूछ के बताता, वो बोलते मैं भूल गया, मैं बोला भूलो नहीं ढूंढो इनको चाहिए, बता क्या दिया आपका फोटो छपा है, तो बस पीछे पड़ गए पूरे। फोटो छपना चाहिए, हमारा आर्टिकल आना चाहिए, हमारी कविता छपनी चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, ये ब्राह्मणों की सूक्ष्म इच्छा है। ऊपर से सब कुछ बाबा करा रहा है, अंदर से मैं निमित्त सेवा समाचार सुना रहे हैं, वो सेवा समाचार भी मैं के समाचार है, सारे सेवाओं के समाचार नहीं है, वो मैं के समाचार है। मैंने क्या क्या किया,
मैं के
हजार नहीं
बढ़
गया लाख करोड़। मैं तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है। स्लोगन क्या है वो, पाव के लिए कुछ है ना, परमात्मा पाव तक तो नशे नीचे नहीं रखेंगे, क्या भूल गया
अब
वरदान स्लोगन दे,
परमात्मा बाप के मध्य
में और भी कोई पॉइंट रह गया है मुरली में पूरा? ये एक ही मुरली पर कितनी गहरी है और कितनी बार पढ़ने की आवश्यकता है उसको, एक बार पढ़ने से नहीं होता है, बार बार पढ़ के बार बार चिंतन करके, जितनी बार पढ़ोगे हर बार नए नए पॉइंट्स निकलेंगे। पर ब्राह्मणों के सामने नया भोजन आता है, बस आज की मुरली चाहिए, आज की मुरली चाहिए, कई लोग इसी में लगे रहते हैं, आज की मुरली कहाँ है, कल की हो गई क्या पढ़ के? नहीं मिली ठीक है, नहीं मिली जो है वो तो करो अध्ययन। और कोई पॉइंट है संजय भाई? पूरा हो गया। ओम शांति।